नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की भगवान महावीर के समो शरण की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर अपनी तपस्या के निरंतर 12 वर्ष के पश्चात केवल ज्ञान को प्राप्त करके लगभग 2 महीने यानी 66 दिन तक पुनः मौन धारण किया, बोले नहीं। उनकी दिव्य ध्वनि के लिए तरसने वाले भव्य प्राणी चतुर गति के तो नहीं 3 गति के जीव समोशरण के अंदर उपस्थित थे। भगवान की मुखारविंद का वीतराग मुद्रा का दर्शन करते करते तृप्त तो हो रहे थे, लेकिन जिससे असली तृप्ति आत्मा को मिलना चाहिए वह तृप्ति नहीं मिल पा रही थी। भगवान का दर्शन करने से आनंद अवश्य आता है, उनको छोड़ करके घर जाएं ऐसे भाव ऐसे परिणाम किसी के नहीं होते। देखते ही रहें ऐसा लगता है जैसे अभी 15-16 दिन से आप लोगों को यहाँ लग रहा है। महावीर भगवान का ही यह समोशरण है। जब देखते हैं तो नजर नहीं हटती वहां से, और यदि दिव्य ध्वनि वहां से खिरने लग जाए तो शायद ये खंभे, ये दीवार, ये छत सब अलग हो जाएंगे और लोगों के लिए बैठने के लिए अपने आप जगह बनने लग जाएगी। अगर दिव्य ध्वनि खिरने लग जाए तो देवता लोग तो उतर के आ जाएंगे, यहाँ तो हम लोग मनुष्य ही मात्र हैं, देव लोग भी यहाँ अवतरित हो सकते हैं। भगवान का उपदेश होने लग जाए तो देव लोग निश्चित आएंगे। महाराज उपदेश दे रहे हैं तो देव लोग कहते हैं देखेंगे बाद में आएंगे। लेकिन आज पंचम काल में भगवान तो हमारे लिए परोक्ष हैं, उस परोक्ष दृश्य को भी प्रत्यक्ष बना करके इस प्रकार से दिखाया जाता है और देख देख करके उस प्रतिमा के भीतर हमें महावीर भगवान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। वो कैसे बैठते थे, कैसे उपदेश देते थे, कैसे उनकी वीतराग मुद्रा थी, समोचरण का वैभव कैसे था, देवलोक किस प्रकार से विमान से प्रदक्षिणा लगाते हुए पुष्प वृष्टि करते थे, जयकारा लगाते थे, दुंदुवी बजा देते थे, छत्र छत्रत्र कैसे होते थे उनके, ये सारे अष्ट प्रातिहार्यों का वैभव वहां पर साक्षात देखने को मिलता है। ऐसा ही यहाँ पर भी मिल रहा है। अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, देव विमान, देवों की दुंदुभी इत्यादि, ये सारे के सारे समोचरण के वैभव कहलाते हैं। इस वैभव को देखकर लोगों का मन आकर्षित होता है और भगवान के वीतराग मुद्रा में तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। जब उनकी वाणी को वो सुन लेते हैं तो अपने आत्मा का ख्याल आता है, मेरी आत्मा भी अनादिकाल से इस संसार में भटक रही है। जैसे भगवान की आत्मा भटकते भटकते आज वो परमात्मा की अवस्था में है, वो भी एक सामान्य मनुष्य की तरह, मानव की तरह थे, आज भगवान के रूप में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। यह धर्म का ही परिणाम है, आत्म साधना का ही परिणाम है। आत्म साधना किए बिना, आत्मा के पाप कर्मों को दूर किए बिना कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है और उसी शक्ति को उघाड़कर परमात्मा का रूप धारण करने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। इस भाव में भले ही न बने, अगले भाव में तो कम से कम परमात्मा बनने की चेष्टा हमारी बराबर रहेगी और वह जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक तो हम लगे रहेंगे। भगवान बनने का ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, मुझे भी बनना है, जल्दी जल्दी मुझे पाप कर्मों को धोना है। भगवान के उपदेश को सुन सुन करके जीवन कैसे निर्माण करना चाहिए, जीवन में कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए, क्या नहीं ओढ़ना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये आ गई हमारी गाड़ी, रुको जरा, पास आ रही है रेलवे गाड़ी, पास स्टेशन पर आ गई है, रुकने वाली है। इरुन फिरुन गंगावेश, इरुन फिरुन गंगावेश कोल्हापुर में बहुत प्रसिद्ध कहावत है। इरुन फिरुन गंगावेश का मतलब जहाँ कहीं से भी कोल्हापुर में घूम करके आ जाओ गंगावेश में आना ही पड़ता है। ऐसा एक गंगावेश नाम का स्थान है, गंगावेश कहते उसको, सभी लोगों को मालूम हो, कोल्हापुर तो हमेशा घूमने जाते हैं। इरुन फिरुन गंगावेश जैसे है ना, भगवान का प्रवचन और मुनियों का प्रवचन, इरुन फिरुन अहिंसा का गंगावेश, इरुन फिरुन उनका प्रवचन घूम करके अहिंसा पर ही आता है। प्रवचन घूमेगा अहिंसा पर आएगा। अहिंसा पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? हिंसा का मार्ग आत्मा के लिए पाप बंधन का कारण है। अहिंसा से पथ पर चलोगे तो निरंतर पापाश्रय होगा। रात को सीढ़ी देखा, देख पाए कि नहीं देख पाए, हृदय कप गया होगा और उठ के भाग गए होंगे। अब देखिए, आप अपनी रेशम की साड़ी को देख लो और जरा उस दृश्य को याद करो, और व्हेल मछली को भी देखा होगा, उसको कैसे लटका के काट रहे थे, वो जैसे लकड़ी काटते हैं। इतनी बड़ी मछली, पंचेंद्री संगी पंचेंद्री, उसको कहा है, उसको सम्यक दर्शन अगर हो गया, अनुवृत्ति बन गया या सम्यक दर्शन ही मात्र हो गया, तो भगवान ने कहा है वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ऐसे प्राणी को बंदूक मारकर उसकी हत्या करते हैं और पकड़ करके जहाज से खींचते हुए ले आते हैं और उससे लिपस्टिक बनता है, नेल पॉलिश बनता है, और महिलाएं आराम से अपने शरीर को सजाने के लिए यूं यूं लगाती है, दर्पण में देखती है। देखो, पुरुष इस पाप को नहीं करता, महिला ये पाप को करती है। कॉलगेट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर तो हड्डी का बनता है, उसी का हड्डी है वो, हड्डी निकाल करके पाउडर बनाया जाता है, उसको आप लोग दर्पण के सामने खड़े होकर ये पाप करते हैं। नरकायु का बंद कब होता मालूम? उस पाउडर को जब लगाते हैं ना, आराम से सप्तम नरक का आयु का बंद होता है। लगाओ, खूब लगाओ, कोई मना नहीं, लगाओ परफ्यूम। हाँ, उसमें परफ्यूम का भी बताया, मुझे मालूम, याद नहीं, मैं उसमें डाल देता मैं। परफ्यूम भी वही हिंसाजनक है। इन वस्तुओं को त्याज्य करना चाहिए अपने जीवन में, कभी नहीं लगाना, कभी नहीं उपयोग करना। एक रेशम की साड़ी उपयोग मत करना, छूना भी मत उसको, महापाप है। छूते समय भी नरकायु का बंद कर सकते हो। फार्म वापस चाहिए तो हम दे देते हैं, किसी ने भी रेशम साड़ी का नहीं भरा है, कुछ लोगों ने भरा है, बहुत से लोगों ने नहीं भरा है। क्या है मोह, इतना ही है ना। हम नरक से बच रहे हैं, नरक से बच रहे हैं, और हमारे क्या 10-12 हजार रुपए नष्ट हो जाएंगे, इतना ही है ना, और क्या है, इससे ज्यादा क्या है। क्यों मोह करते हैं उस पर समझ में नहीं आता है? सब लोग आगे खिसक करके बैठ जाएं या खाली है, बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऊपर बैठने के लिए बता दें, आप लोग ऊपर बैठ सकते हैं, बाहर से आए हुए लोग, ऊपर जगह है चाहिए, दिखता है ऊपर से,
थोड़ा सा वहाँ खड़े होकर के ऊपर भी भेज दीजिए, ऊपर जाएंगे तो बातें करने लगते हैं,
ऊपर ही ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा।
अष्टक पूजन वाले आगे आ जाएंगे ना, हाँ ऊपर चले जाइए, ऊपर जाएंगे तो बातें नहीं करना। मेल लोग कनस्तरे माता बेटा मेल कुत्कोड प्रवचन चलो इत माता बैठ रहे बोलना नहीं, चलो विषय पर इधर ध्यान दो। अब वो बीच में आते, बीच में प्रवचन पूरा नहीं करते, चले जाते बीच में। कि उनको पहले एक जन कोई खड़े हो जाए, पूर्व प्रयोजन सुनना है कि बीच में जाना देख लेना, जाना हो तो पीछे के दरवाजे से निकाल देना। अब इधर से किसी को आने नहीं देना, पीछे शाला है ना, शाला के पाठशाला के दरवाजे से निकालना, उनको बोलना नहीं कोई। बोले परम पूज मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की। बेटा शांति से, बाहर गाड़ी है, बाहर निकाल दे उसको, बंद करवा दे तो बाहर दूर निकाल दे।
महावीर भगवान ने जिस धर्म का उपदेश दिया है वह धर्म, धर्म के शास्त्र, शास्त्रानुसार चलने वाले श्रावक, शास्त्रानुसार चलने वाले मुनि महाराज, ये सभी आज तक इस धरती पर जीवित हैं। ये जीवित हैं इसलिए संसार में कुछ शांति है। अगर इतना भी जीवित नहीं होते तो संसार में अशांति ही अशांति, अशांति ही अशांति होती। हमको शांति पाना है क्या अशांत रहना है, सुखी होना है क्या दुखी होना है, पाप कमाना है क्या पाप से बचना है। पाप से बचने के लिए महावीर भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया है तुरंत अपने जीवन में उसको उतारो, प्रमाद मत करो, क्योंकि आगामी आयु का बंद किस क्षण हो जाए आपको कोई गारंटी है क्या। और हमारा जीवन पाप में फंसा हुआ हो तो उस समय क्या हम अच्छी गति को बांध सकते, देव गति को, मनुष्य गति को। पाप कर रहे हैं और हमारा जीवन पाप में लिप्त है तो देव गति का बंध होगा क्या। पाप में लिप्त है तो किसी भी क्षण त्रिंच आयु का या नरक आयु का बंध हो सकता है। त्रिंच आयु का बंध होगा तो जिस प्रकार का आप पाप करते रहते हैं उसी प्रकार का त्रिंच आयु का बंध होगा। रात को देखा, दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के लिए घबराना नहीं, बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए कि दुनिया में किस किस प्रकार से पाप हो रहे हैं, उसको तो अवश्य देखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। रात में भाग करके क्यों गए, रेशम के साड़ी पहनने से तो भागते नहीं, उसमें मोह अटका हुआ है और आप उस चित्र को देखने से भाग गए। असल में किससे भागना था अपने को, रेशम की साड़ी को हाथ स्पर्श करने से भागना था। ये क्या है रेशम की साड़ी, हमने छूते भी नहीं, बहुत बड़ा पाप है। वहां से भागना चाहिए था। आप किससे भाग रहे हैं, हिंसा को देख करके तो भाग रहे हैं, लेकिन हिंसा के पश्चात जो वस्तु आपके घर में आ गई है उससे तो गले लगा रहे हैं, उससे तो शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं, तो कैसे आप पाप से बच रहे हैं, कैसे जैन हैं आप हैं? कैसे जैन श्राविका, नहीं जैन श्राविका तो हम नहीं कह सकते। इतना सब कुछ किया उसको भी देखा और फिर भी दिल में दया नहीं आ रही है और उसको छोड़ने के मोह नहीं छूट रहा है। 12,000 का केवल, स्वर्ग में जाओगे तो 24,000 हम दिला देंगे इंद्र से, अभी 12,000 का त्याग करो। यदि पैसे से मोह है तो पैसे हम दे देंगे, आप उस वस्त्र से मोह छोड़ो, त्यागो, कोई मतलब नहीं उससे। एक केची ले लो, उसको काट कर दो और गड्ढा खड्डे में उसको ढाक दो। महावीर भगवान ने कहा है, हिंसक वस्तु दान के योग्य नहीं होते, हिंसक वस्तु जीवन में प्रयोग करने के योग्य नहीं होते, उपयोग करने योग्य नहीं होते। जो हमारे लिए ही उपयोग करने के योग्य नहीं है वो दान के भी लिए योग्य नहीं होता है। इसलिए उस वस्तु को खड्डे निकालकर मिट्टी से ढाक देना एक ही रास्ता है, और वह लाया ही है तो कितने साल तक पहनेंगे आप? साल भर में उस रेशम साड़ी को कितने बार पहनते हैं? एक या दो बार, और उसी दिन नरकायु का बंद हो गया तो क्या करोगे? 12,000 में तुम नरक जाओगे क्या? 12,000 के मुंह से नरक जाना पसंद करोगे क्या? अरे 1,00,000 भी जाता है जाने दे, अपने जीवन को पाप में क्यों ढकेलना? छोड़ो मुंह, पहनना ही नहीं, उसको छूना भी नहीं, और निकाल के खड्डे में डाल दो। ये खेत में जाओ, खड्डे में डाल दो उसको, अनुपयोगी बनाओ पहले, नहीं तो खड्डे में निकाल करके कोई और ले जाएगा। हाँ, लोभी बहुत हैं जीव आज। हाँ, केंची से 10-12 टुकड़े कर दो उसके, और खेत में ले जाओ, वो खड्डे में डाल दो। सबसे अच्छा नरकायु से बचाना चाहता हूँ, देखना टोकरी भर करके लाए वो कीड़ों को, और उबल रहा था पानी, उसमें डाल दिया और वो उबल रहे थे, एक जैसे भुजिया उबाते हैं ना, भजी भजी बनाते हैं, ऐसे बना रहे थे। आप देख भी नहीं पाए, भाग गए। ऐसा भागना नहीं चाहिए, कम से कम ये पाप क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, तुलना करना चाहिए। दुनिया में ऐसे बड़े बड़े पाप हो रहे हैं तो मेरे जीवन में तो ये नहीं हो रहा है, ऐसा संशोधन, अपने जीवन का संशोधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भागने से काम थोड़ी चलने वाला है। उस कैसेट को घर घर में रखो, अपने रिश्तेदारों को दिखाओ, डेमिंग बनाओ उसका, रिश्तेदारों को दिखाओ, रिश्तेदारों को नरक जाने से बचाओ। आप पसंद करेंगे कि आपकी लड़की नरक जाए? और अपनी लड़की के लिए हाईएस्ट वस्त्र खरीदते हैं और उसको देते हैं, नरक भेज रहे हैं क्या? पति के घर भेज रहे हैं, नरक का टिकट दे दिया और पति के घर भेज रहे हैं, तो पति के घर जाने के बाद वो तो नरक जाएगी। और सौभाग्य की रक्षा के लिए तो जीवन भर मनोती करती रहेगी कुदेवों से, और खुद नरक गई, पति स्वर्ग गया क्योंकि उसने तो रेशम साड़म नहीं पहना। और साथी कैसे बनेंगे? सौभाग्य पर भव में भी चाहते हैं, इस भव में भी चाहते हैं, साथी कैसे रहेंगे? एक पाप कर रहा है और एक पुण्य कर रहा है, पति तो स्वर्ग जाएगा क्योंकि इस महान पाप से वो बच गए, और आपका नरक निश्चित है। नरक नहीं भी जाएंगे तो कीड़े तो श्राप दिए हैं उसको बनाते समय, 6,000 उन्होंने बता दिया कितनी संख्या में एक साड़ी बनती, 6,000 कीड़ों को उबालने पर एक रेशम की साड़ी बनती है, 6,000 कीड़ों को। अब पहनते समय वो पाप लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? पेनने की आशा फिर भी रखेंगे तो पेन लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मर करके एक बार रेशम का कीड़ा तो बनना ही पड़ेगा, निश्चित है, गारंटी है। भगवान के वचनों पर विश्वास करना हो तो ये पाम्पलेट जो मेरे पास आए हैं वापस ले लेना और उसमें रेशम का सबसे पहले भर देना, रेशम का एक का सबसे पहले भर देना। 6000 कीड़ों को मार करके तुम्हारी वो साड़ी बनी है और पहन रहे हैं, मुंह नहीं छूट रहा है, तो कैसा दिल है, कैसी दया। केवल पैसे का मुंह, पैसे का मुंह, पैसे का मुंह, 6000 नष्ट हो रहे हैं हमारे, 12000 नष्ट हो रहे हैं, होने दो ना, क्या बिगड़ता है। पैसा आता है, पैसा जाता है, तुम धर्म करते जाओ, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। पैसे की चिंता मत करो, वस्त्रों की चिंता मत करो, अचेतन वस्तु के प्रति इतना मोह, इतना ममत्व ठीक नहीं है। ये मोह अभिशाप है जीवन के लिए। महावीर भगवान ने भी यही कहा, हम भी यही कह रहे हैं, समोह शरण में बैठे बैठे उन्होंने यही उपदेश दिया, हे श्रावकों, हे श्राविकाओं, यदि तुम दया दिल वाले हो, करुणा दिल वाले हो, तो ध्यान रखना 8 मूल गुणों को धारण कर लेना, अपने जीवन को सबसे पहले स्थूल हिंसा से मुक्त कर लेना। स्थूल हिंसा में क्या क्या आते हैं, एक मिथ्यात्व महाहिंसा है, अंतरंग आत्मा की हिंसा है, मिथ्यात्व त्याग, स्थूल हिंसा रेशमी वस्त्र, 6000 कीड़ों का हिंसा उसका त्याग, ये 8 मूल गुण में आएंगे। 8 मूल गुण धारण करने वाला ही श्रावक की कोटि में आता है। आठ मूल गुण नहीं है तो सम्यक दृष्टि भी नहीं और श्रावक भी नहीं। पहला गुणस्थान, सम्यक्त्व की उत्पत्ति भी ऐसी आसानी से थोड़ी होती है। स्थूल हिंसा को त्याग कर स्थूल अहिंसा के पक्ष में आने वाला ही 8 मूल गुणधारी श्रावक और श्राविका ही क्या कहलाते हैं, पाक्षिक सम्यक दृष्टि। पाक्षिक सम्यक दृष्टि, पहली सीढ़ी पर कदम रखो, 8 मूल गुण निर्दोष कदम रखो, मोह को त्याग कर साहस करके, साहस है कि नहीं, मोह तुमको साहसी बनने नहीं दे रहा है, थोड़ा चिंतन करो और साहस बढ़ाओ। फॉर्म आया है मेरे पास, वापस ले लेना, दोबारा भर लेना उसमें। जिसने रेशम की साड़ी का नहीं भरा अवश्य भर देना, जिंदगी के प्राणों का मुंह भी छोड़ो लेकिन रेशम की साड़ी छोड़ो। उसको छोड़ेंगे तो क्या मरेंगे, पहनेंगे तो मरेंगे, नहीं पहनेंगे तो मरेंगे, दोनों में अच्छा कौन सा है, नहीं पहन के मरना और स्वर्ग में जाकर के बैठना, और पहन करके उसके भीतर मरण हुआ तो नरक में जाकर के बैठोगे, अब कौन निकालने वाला, तुम्हारा पति भी नहीं आ सकेगा, तुम्हारे बच्चे नहीं आ सकेंगे, कौन उठाएगा वहां से आकर के। आपको धर्म बचाना है कि साड़ी बचाना है, क्या कर रहे हैं काम, कैसे सोच रहे हैं। सभी लोगों ने प्राय करके 3 में कमजोरी रखा है, एक रेशम की साड़ी, एक मिथ्यात्व और एक चमड़े की वस्तु। इस 3 नियम जो मुख्य हैं उसी में फेल है, अब बचा क्या, जो मुख्य है उसी में फेल है, बचा क्या, वो तीन छोड़ दिया तो प्राक्षिक श्रावक के कोटि में तो आए ही नहीं आप। और फिर ये पूजा सब व्यर्थ जा रही है, ये हजार आठ आठ से क्या हजार पूजन द्रव्य के लिए कितना खर्च किया है? 700, ये भी सार्थक नहीं होगा, इसका फल थोड़ी मिलेगा। महावीर की पूजा करी, रेशम की साड़ी को साथ में रखकर, उसका मुंह रखकर, उसको पहनते हुए महावीर की पूजा करी और महावीर के बात नहीं माने, तो ये 800 व्यर्थ हो रहे हैं क्या? नहीं, इससे अच्छा था इस 800 से एक और रेशम की साड़ी खरीद लेते, दो होते। क्यों बर्बाद किया इस पूजा में 800 को? क्यों बर्बाद किया? बनाओ मन, तैयार करो, मानसिकता बना लो कि रेशम की साड़ी का त्याग करना है, करना ही है, कर लो। कोई घर में माने या ना माने, घर की बातों में नहीं आना, हमको अपना स्वर्ग देखना है, अपना आत्म कल्याण देखना है, हमको नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। और घर में कोई मना करता है तो उनके लिए तुम ही पहन लो, मैं नहीं पहनता। एक और चाहिए हो तो बुलवा के दे देना उसको घर में। आज अवश्य विचार करेंगे, मैं नरक से बचा रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत दया आ रही है, सब कुछ किया, 800 यहाँ खर्च हो गए बोली में, आरती में, मुझे दुख हो रहा है वो सब देख करके, इतना दशलक्षण में खर्च किया, उसमें तो मोह छूट गया पैसा का, पैसा का मोह उसमें छूट गया, इसमें नहीं छूट रहा है। और जिंदगी भर साड़ी तो वो साड़ी दो बार पहनते हैं, लेकिन उसके प्रति स्वामित्व तो बुद्धि तो रहती ही है कि मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, और शल्य भी रहेगा, ये पाप है, पाप है, फिर भी पहन रहा हूँ। और शल्य के साथ मान के चले, आपका जीवन का दो हिस्सा चला गया और तीसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, आयु बंद का समय आ गया, नरकायु का बंद हो सकता है नहीं, उस शल्य के साथ अच्छी गति का बंद तो हो ही नहीं सकता। क्यों इतना वस्त्र से चिपके हैं? वस्त्र का मोह है ये, स्त्री पर्याय में वस्त्र से मोह, आभूषण से मोह, प्रसादन सामग्री से मोह, ये नरकायु के बंध के कारण है। अब पुरुष पर्याय में कौन कौन से मालूम है? दुकान पैसा, दुकान पैसा, बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकशायुष्य, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, संकलन करने की जो अति इच्छा होती है उनके लिए वो नरकायु के बंध का कारण है। पुरुषों में कितने लोगों ने फार्म भरा? सभी लोगों ने भरा? पूजन में जितने बैठे थे
लड़के लोग,
स्थूल पाप का त्याग करना है अपने जीवन में से, और घर में यही संस्कार देना है। यूज करते समय ही नरकायु का बंद होना है, और स्वामित्व तो बुद्धि रहेगी क्या? नहीं, मैं क्या समझा रहा हूँ उस ओर नहीं, तुम नहीं खरीदोगे, मुझे मालूम है कितनी दया दिल में, जब वर्तमान में वस्तु को त्यागने के भाव नहीं आ रहे हैं तो नहीं खरीदेंगे ना, ये क्या भरोसा? नरकायु कभी माफ नहीं करता किसी को, वस्तु का त्याग होने के बाद ही परिणामों की शुद्धिकरण होता है, प्रायश्चित होता है। ऐसे कोई तरीका है कि वो परिणामों की शुद्धिकरण करने का है? ये तरीका नहीं है। आत्म परिणामों का शुद्धिकरण वस्तु के त्याग से होगा क्या? ग्रहण करने से होगा, यूज करने से होगा है? त्याग करना ही पड़ेगा ना। जिसमें महापाप है उसको तो तुरंत त्यागने के लिए कहा है, महापाप है ये। छोटे मोटे पाप तो ठीक है, उसमें नरकायु का बंद नहीं होता। बहुत हिंसा, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह जिसमें होता है उसके लिए कहा है। चिंतन नहीं कर रहे हैं? चिंतन नहीं हो रहा है क्या? उस पर ज्यादा सोचो और दिल में दया जगाओ, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ज्यादा सोचो, ज्यादा चिंतन करो और दिल में दया जगाओ, ऑटोमेटिक छूटेगा। घर वालों को मत देखना, घर वाले मूर्ख रहते हैं, वो जो प्रवचन भी नहीं सुनते और कुछ भी नहीं करते, उनकी बातों में नहीं आना। अपने को अपने नरक से बचाना, अपनी आत्मा को बचा लेना। घर वाले कहाँ जा रहे हैं इसकी फिक्र नहीं, जाने तो उनको जहाँ जाना है। यदि पति भी ऐसा कह देते हैं तो भी मत मानना, हम नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, हम त्याग करेंगे। पुरुषार्थ करोगे? एक रेशम साड़ी के लिए एक कदम आगे बढ़ो, एक ही कदम आगे बढ़ो। क्यों नरक जा रहे हैं? हम लोगों के पैसे बच गए। कौन से पैसे बच गए?
पैसा तो बच गया हमारा, कुछ लोग कह रहे
हैं। हाँ, वो भी राजी हैं। आप लोगों को उसको छोड़ो कह रहे हैं, वो परमिशन है उनकी तरफ से, क्योंकि उनको नया खरीद करके देना नहीं पड़ेगा, भविष्य में नया खरीद करके देना नहीं पड़ेगा। और जो वर्तमान में है आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप जिम्मेदार हैं, कह रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। अब मोही तो आप हैं, अपनी वस्तु से आपको देखना है, आपकी वस्तु से आप ही मोही हो रहे हैं। बोली लगाएं? नहीं, पैसा नहीं देना, साड़ी देना सीधा। बोली लगाते हैं, चलो हमको साड़ी चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, रेशम का ही चाहिए। कौन लाके रखेगा? बोली सवाल, हमको पैसे नहीं चाहिए, साड़ी चाहिए। कौन कितना त्याग करेगा? कौन कितना त्याग करेगा? कितने साड़ी त्याग कर रहे? सभी जो हैं, सभी सभी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस 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 चौबीस पच्चीस पच्चीस छब्बीस ऊपर भी है क्या? छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तीस लोगों ने बोली ले ली, और वो तीस साड़े यहाँ ला करके देना पड़ेगा। तुमको साहस नहीं होगा उसको काट करने का? हाँ, साहस ही नहीं बन पाओगे, यहाँ ला के देना पड़ेगा। हम कुछ भी करेंगे उसका, यहाँ ला करके अपने सामने रख दो, हम कुछ भी करवा लेंगे उसका, ठीक है? हाँ, दोपहर के ले आएंगे। हाँ, उसको तीस लोगों ने बोली ले ली। हाँ, और कोई नहीं? तीस तीस तुम्हारी कहाँ है? बैठ जाओ। मानसी, तुम्हारी मानसिकता ठीक है? और कोई? तीस तीस लोगों ने। और कोई ऊपर? नहीं, ऊपर बाहर के लोग आए, तुम लोग बाहर के। हाँ? शर्ट है किसका? दोनों का? आप लाके देंगे? ठीक है। पुरुषों के पास शर्ट भी थे, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो भी तैयार हो गए। देखो, हमको हमारी बोली बढ़ गई, उसी बोली में आपने ये समझ के चले कि हमने रेशम की साड़ी को दान में बोली में दे दिया है, शुंसा को हमने स्वाहा किया है, अपने जीवन के महाहिंसा को हमने पहली बार स्वाहा किया है, ये समझ करके उसको दे दो। और पैसा अगर लगे तो उस 1000 रुपए की साड़ी की जो कीमत है वापस ले लो आप, लेकिन इसको छोड़ो। दोपहर को ले आना उसको, लाएंगे ना दोपहर को लाएंगे, कौन कौन लाएंगे देखना देखना देखना, कितने लोग लाएंगे दोपहर को, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर एक उठा था कोई हाथ, 13 14 15 16 17 18 18 19, बाहर के हैं तो उसको 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 क्या करना मालूम है ना आपको, हाँ रविवार के दिन ले आना, ठीक 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 है रविवार के दिन ला करके देंगे। बहुत अच्छा, देखो त्रिंच आयु से और नरक आयु से बचना चाहते हैं, त्रिंच गति से, सुनिए सुनिए हाँ, जिसको लाना है दोपहर को लाओ, जिसके घर में है ले आओ, त्रिंच आयु से बचना चाहते हैं तो इतनी वस्तु आप स्वयं के लिए संकल्प लेना, दूसरे का छोड़ो घर में कौन कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, आप स्वयं के लिए विचार करो, एक चमड़े की चप्पल नहीं पहनोगे और रेशम की साड़ी नहीं पहनोगे, सुन रहे हैं, चमड़े की चप्पल फर्श वगैरह का उपयोग नहीं करोगे और क्या करेंगे, रेशम की साड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। देखो और मिथ्यात्व तो उसके साथ कंपल्सरी रहे, कंपल्सरी है वो, देखो इतना त्याग करने वाला, हिंसा का त्याग करने वाला मिथ्यात्व का त्याग नहीं करता है तो हिंसा का त्याग किया हुआ पुण्य नहीं मिलता, वो धर्म लगता ही नहीं। तो एक मिथ्यात्व और ये तीन जो मुख्य हैं उसी को कॉलम छोड़ दिया है, बाकी सब भरा है, नित्य स्वाध्याय करेंगे, क्या करोगे स्वाध्याय, स्वाध्याय में तो वही आ रहा है स्थूल हिंसा छोड़ो, क्या स्वाध्याय करके क्या करोगे, मुख्य तीन जो छोड़ता है उनके लिए स्वाध्याय करने पर भी फल की प्राप्ति होती है। ये स्वाध्याय में क्या करोगे, भगवान के महावीर की वाणी को ही पढ़ोगे ना, उसमें यही लिखा है स्थूल हिंसा को त्यागो पहले, यही लिखा है, जो चमड़े की वस्तु पहनता है पांव में लिपस्टिक लगाता है ये स्थूल हिंसाएं हैं, रेशम साड़ी ये भयंकर स्थूल महापाप हिंसाएं हैं, इसको जो नहीं छोड़ता है वो स्वाध्याय के लिए भी पात्र नहीं है, स्वाध्याय करना उसका व्यर्थ है। स्वाध्याय की पात्रता स्थूल हिंसा को, हिंसा का जो त्यागी है उसी के लिए है, क्योंकि सबसे पहली मंगलाचरण में वो कहते हैं स्थूल हिंसा छोड़ो, तो छोड़ करके कर रहे हैं तो पहली लाइन आपके जीवन में पल्ला पड़ गया, साकार हो गया, पहली लाइन ही आपको जीवन में साकार नहीं हो पा रहा है तो आगे की बात तो व्यर्थ की बातें हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे की बातों में, जो बातें अपने जीवन में करना असंभव है उनको पढ़ने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, कैसे करना क्या करना, अपने आत्मा को, आत्मा के जीवन को कैसे बनाना पुण्यमय, कैसे बनाना, इसके लिए हम पढ़ते हैं। और जो स्थूल को छोड़ता है वो स्थूल का अध्ययन, सूक्ष्म का अध्ययन करता है, उसको भी किस प्रकार से धीरे धीरे मुक्त होना, सूक्ष्म हिंसा से आपको नरकायु का बंध नहीं होता, स्वर्ग भी मिलता है, सूक्ष्म हिंसा है वो। आप एक दिन अनछने पानी भी पी लिया तो नरक नहीं जाओगे, क्रिंच गति नहीं जाओगे। लेकिन ये कितनी बड़ी हिंसा है, लाखों करोड़ों जीवों की हत्या करके कितनी बड़ी मछली वो फेल मछली ला करके लटका दिया और ऐसे काट रहे हैं शस्त्र से, उसको देखना तक नहीं हो रहा है और उससे परफ्यूम बन रहा है, उससे लिपस्टिक बन रहा है, उससे पाउडर बन रहा है। ये क्या लगाने लायक है महिलाओं को? आप जैन महिला है सोचो, पाउडर लगाने का मोह नहीं छूट रहा है आपका, शरीर को सजाना चाहते हैं। इससे अच्छा है क्या करना चाहिए मैं उपाय बता देता हूँ, नींबू का रस, देखो मेरा पाउडर लगाना हो तो लगाओ, हमारा पाउडर है बता देता हूँ, नींबू का रस और बेसन का आटा, इससे मिक्स करके आप मुंह धोएंगे जल से, लगा करके मुंह धोएंगे, आपके मुंह पर जो काले काले धब्बे होते हैं वो भी जाते हैं, और हल्दी और डालेंगे तो कलर आएगा चेहरे पर, ठीक है कि नहीं? हल्दी, लाल हल्दी डालने से कलर आएगा। ये पाउडर उपयोग करो, इसको लगाने वाला लिंबू भी जीव है, एक इंद्री है, हिंसा जरूर है लेकिन स्वर्ग जाओगे, छोटी हिंसा है वो महाहिंसा है। रेल मछली को जो 16वें स्वर्ग तक जा सकता था, जबरदस्ती बंदूक मारकर उसको लाए, पंचेंद्री जीव है, पंचेंद्री, एक इंद्री जीव को मारना छोटी हिंसा है, पांच इंद्री वाले जीव को मारना सबसे बड़ी हिंसा है। नरकायु का बंध जो होता है त्रस्कायिक जीवों की हिंसा से होता है, ये केंद्रीय हिंसा था तो सावक के जीवन में वह अनिवार्य माना जाता है, उसको छोड़ नहीं सकता वो, और मुनि के जीवन में कोई भी हिंसा नहीं रहती, वो तो एकेंद्री जीव जीव की हिंसा के भी त्यागी हैं और त्रस का एक जीव की हिंसा के भी त्यागी हैं। ये हिंसा होती है इसलिए मुनि दीक्षा लेते हैं, हिंसा करना ही नहीं पड़े, ये पाप करना ही नहीं पड़े, पाप से भयभीत हैं इसलिए मुनि महाराज बने हैं, और मुनि बनने के बाद यदि पाप से भय नहीं है तो उनके लिए कहा है नरक ही नहीं निरोध में भी जा सकता है वो मुनि बनकर। मुनि अवस्था में आने के बाद अगर हिंसा का त्याग नहीं हुआ है, परिग्रह के चक्कर में पड़े हैं, तो नरक भी जा सकता है और निबोध भी जा सकता है, ये कहा है, बिल्कुल सत्य है। दीक्षा लेते तम समय तो ये कहा कि हम त्रस की भी हिंसा नहीं करेंगे और स्थावर की हिंसा नहीं करेंगे, और हिंसा के कारणीभूत जो परिग्रह है उसको पूर्णतः हम त्यागेंगे। 10 परिग्रह का त्याग किया और बाद में मायाचारी की, पहला त्याग दिया 10 परिग्रह, बाद में रखने लगे, रुपया पैसे के चक्कर में आ गए, तो मुनि व्रत भंग हुआ क्या नहीं, महाव्रत भंग हुए क्या नहीं? एक तो महाव्रतों को भंग करने का पाप, और बाद में हिंसा में जो प्रवृत्त हो रहे हैं इसमें मायाचारी का संबंध आ गया, झूठ बोल दिया, दीक्षा लेते समय तो त्यागेंगे ये कहा और बाद में त्यागा नहीं, तो झूठ बोलने का, मायाचारी का, सबका पाप में प्रवृत्त, सब पाप प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति हो गई, ये मुनि महाराज निगोद जाते हैं। और वो जो कीड़े हैं रेशम के कीड़े, वो ऐसे जब जो ही पानी में डाल दिया जाता है चटके से मर जाते हैं, वो उस समय श्राप देते हैं, वो मुझे कौन मार रहा है, किस लिए मार रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं, रेशम साड़ी के बनने के लिए मार रहे हैं तुमको, तो क्षमा करेंगे क्या, वो क्षमा करेंगे? वो ऐसे तड़पते हैं तड़पते हैं, हाथ पांव हिलते रहते उसके, तड़पते 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 मरते हैं, और वो भी ऐसे ही श्राप देते हैं, जैसे दशरथ को उसने श्राप दिया था, किसने? श्रवण कुमार ने, तुम तड़प तड़प के मरोगे, तुम तड़प तड़प के मरोगे, तुम तड़प तड़प के मरोगे, शाप दिया था
पिताजी,
उसके पिताजी को मार दिया था ना उनने, गलती से मार दिया था और जानबूझकर नहीं मारा था।
श्रवण कुमार,
श्रवण कुमार के पिता को
नहीं,
हाँ श्रवण कुमार के पिता को मार दिया था उन्होंने, बाण लग गया था। दशरथ ने श्रवण कुमार, श्रवण कुमार को मारा, उनके पिता ने श्राप दिया, ठीक है, पिता ने श्राप दे दिया। देखा है ना रामायण में, रामायण में क्या, हाँ रामायण में आता है ये, कैसा श्राप दिया था श्रवण कुमार में, मार दिया था। वो पानी लाने गए थे और उनके माता पिता जो उनको कंधे पर, अंधे थे वो, कंधे पर रख करके यात्रा करते थे हर जगह। इतनी माता पिता की सेवा में श्रवण कुमार लगे रहते थे। हमारे माता पिता जब तक इस शरीर में रहेंगे उनकी सेवा मैं सतत करता रहूंगा। और हुआ क्या, जो सेवा करता था, जिसके आश्रय से जिनके जीवन, जिनका जीवन था, वो श्रवण कुमार पानी लेने के लिए नदी में गया। वो पानी भर रहा था, डुब 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 आवाज आ गई, घड़े की आवाज, पानी भरता हुआ। दशरथ उधर, शिकार खेलने की आदत थी उनको, कहीं भी हाथी पानी पी रहा हो, हिरण पानी पी रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो शब्द विद्या थी उनको। यह वस्तु, जहां से वस्तु की आवाज आ रही है उस दिशा में बाण छोड़ेंगे तो सीधा जाकर के उस वस्तु को लग जाती, ऐसी विद्या दशरथ के पास, वो सीखता था, इस विद्या को सीखने के लिए गया था। और उसने क्या कर दिया, वस्तु को तो देखा नहीं कौन है, और उन्होंने समझा ये कोई हाथी है या कोई प्राणी है, ये कह करके बाण चला लिया। और वहां पर श्रवण कुमार पानी भर रहा था और उनको लग गया, वो मर गए। फिर जाकर के धीरे से देखा दशरथ ने, वहां पर देखा तो एक आदमी मर करके गिर गया है। उसका हृदय कपने लगा, अरे मैंने तो आज एक मानव को मारा। उसका हाथ कपने लगा, पांव कपने लगे, निशक्त हो गया वो, कपते 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 आ गया और देख करके उठा करके वो करता है तो प्राण चले गए। जा रहे थे प्राण, उस समय श्रवण कुमार दशरथ से कहता है, तुम कौन हो, मुझे निरापराधी को मुझे को क्यों मारा। तो उन्होंने कहा, मैंने मारने के भाव से नहीं मारा है, मैं ये विद्या सीख रहा था और विद्या सीखते समय मुझे ये सीखने हेतु मैंने बिना देखे मारा, ये मेरी गलती हो गई, क्षमा मांगा दशरथ ने। श्रवण कुमार ने तो क्षमा किया, लेकिन श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता को देख लेना, तुमको क्या करना है अब, तुमको क्या करना है, मेरा माता पिता को देख लेना। मरते समय वो तो मर गए, जहां पानी भर रहे थे वहीं पर मर गए वो। मरते मरते लास्ट में कहा, हे दशरथ इतना ही कर लेना, मेरे माता पिता बहुत 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 प्यासे हैं, बोलना भी नहीं आ रहा था, बाण घुस गया था हृदय में, मेरे माता पिता को ये 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 ये, ये घड़ा, घड़े में पानी पानी भरो और पिलाओ, कह दिया और प्राण छोड़ दिया। पर जाते जाते जो वचन कह करके चले गए थे वो, उसको उन्होंने निभाना कर्तव्य समझा, और जहां वो बैठे थे वहीं चले गए घड़ा भर करके। उनके पांव से शब्द आते थे, कोई आ रहा है। उन दोनों माता पिता का लड़का वह श्रवण कुमार जिस चाल से आता था, उस चाल को, उस शब्द को, पांव के शब्द को पहचान लेते थे कि श्रवण कुमार ही आ रहा है, पर आवाज कुछ अलग आ रही थी। हाथी हुई देखा, तुम कौन हो पूछा तो बोल रहे हैं बोल ही नहीं रहे हैं दशरथ तुम कौन हो श्रवण कुमार नहीं बोल रहे श्रवण कुमार क्या हो गया तुमको बोलते क्यों नहीं हो इतना कहते ही दशरथ के आंखों में इतने आंसू आने लगे रोने लगा वो तड़पने लगा और आज का हाथ में जो गढ़ा था वो कपने लगा ऐसा पांव भी कप रहे हैं और हाथ भी कप रहे हैं क्या कहूं क्या जवाब दूं धीरे से मैं श्रवण कुमार नहीं हूं कहा तो तुम कौन हो बोल क्यों नहीं रहे हो मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं दशरथ तुम्हारे हाथ में पानी कैसा तुम कैसे पानी इधर लेके आ गए मेरा श्रवण कुमार था तुमको मिला था क्या तुम्हारे हाथ में क्यों दिया उन्होंने हमारा नियम है हमारे बेटे से ही बेटे के हाथ से ही पानी पीना तुम नहीं पिला सकते श्रवण कुमार को बुला दशरथ कपने लगा अब इसको इनको पानी पिलाना भी असंभव होगा जाकर के क्षमा मांगा उनने तुम दोनों क्षमा करें और तुम्हारे जीवन की जवाबदारी मेरे ऊपर सौंपा है तुम्हारे बेटे ने हां कह दिया क्या हो गया तो ऐसा ऐसा हुआ कहते ही उनके प्राण ही छूट गए माता पिता के दोनों ये कैसे हुआ क्षमा करो कह रहा है दशरथ क्षमा मांगते मांगते उन्होंने कहा मेरे लड़के को तुम्हारे वजह से ये हो गया तुमने मारा तुम्हारे हाथ से ऐसा हुआ ये कैसे क्षमा करेंगे हम तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे तड़प तड़प कर मरोगे ऐसा कहा कि प्राण छूट गए उसके माता पिता के और दशरथ की स्थिति वही हो गई लास्ट में राम के वियोग में वो तड़प तड़प करके मरने लगे और लास्ट में याद आता रहा दशरथ को जब मरते थे वो तब जब मरण निकट आया तो जैसे कहा था उन्होंने माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता ने वो शब्द कानों में गूंजने लगे वो सपनों में स्वप्न में आने लगा सब कुछ आने लगा वो तड़प तड़प कर मरोगे तड़प तड़प कर मरोगे वो याद भी करता था कि असल में ऐसा ही हुआ किसी का श्राप वह क्षमा नहीं करता हम दूसरे को मारेंगे हमारे लिए भी मारने वाला आएगा यदि इस पर्याय में हम न मरे अगली पर्याय में तो हमको ऐसा ही मरना पड़ेगा जैसा हमने मारा है देखा है और उन वस्तुओं का उपयोग किया है 6000 कीड़े आपको सांप देंगे एक साड़ी पहनने पर और अज्ञान अवस्था में पहना है इसका प्रायश्चित क्या है ये मत पूछो उसका प्रायश्चित तो त्याग ही उसका प्रायश्चित होता है और त्याग अगर हो गया तो उस पाप को आप धो सकते हैं त्याग ही प्रायश्चित है त्याग ही आपको वो पाप को धुलाने में निमित्त बनेगा लेकिन थोड़ा बहुत तो पाप जीवन में बचता ही है पूरा तो नष्ट नहीं होता है वो बचता है लेकिन फिर भी हम इस त्याग और तपस्या के माध्यम से ऐसे पूजन के माध्यम से उन कर्मों के निर्जरा करेंगे तो पूरा कर्म धुल सकता है पूजन भी एक प्रायश्चित का ही माध्यम है ये इससे विशुद्धि बढ़ाएंगे पूर्व में कमाए हुए पापों को धोएंगे जितने बार हमने साड़ी पहना है उतनी बार के पाप को अब धोना पड़ेगा पूजन करके धो स्वाध्याय करके धो सामय करके धो, पूजन साध्या ये साबुन की तरह है, घिस घिस करके धो, उल्टी पांव चलो। अब विचारो, पाप को धोना है क्या ले जाना है? धोना है। पाप को धोएंगे तो आप भी सदगति में पहुंचेंगे, आपकी बेटी सदगति में पहुंचेंगी, क्योंकि आपके आचरण का प्रभाव बेटी पर भी पड़ेगा। तुम बेटी को भी नहीं दोगे रेशम की साड़ी, क्या उसको दोगे? तुम नरक जाओ, मैं स्वर्ग जाती हूँ। हाँ, बाय बाय टाटा, मैं इधर तो इधर। ऐसा है क्या? बेटी पर दया है क्या? नहीं, बेटी पर दया करोगे, तुम्हारी बेटी अगले भव में भी तुम्हारे लिए बेटी बन करके आ जाए। यदि परिवार पर दया करना चाहते हैं तो अहिंसा से चलो, अहिंसा से चलाओ, सबको शिक्षा दो। तुम तो बड़े हैं, गुरु हैं, घर के गुरु बच्चों के माता पिता होते हैं, और मुनि महाराज सबके गुरु होते हैं, भगवान सबसे पूज्य और आराध्य होते हैं, मूल तो वो हैं। हम लोगों को अहिंसा का मार्ग जिसने दर्शाया है, वे परमात्मा महावीर भगवान आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका समोचरण आज हमारे बीच में है, और उस समोचरण में उनका ही सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत यहाँ पर उपदेश में दिया जा रहा है। आपके कान भाग्यशाली हैं, आपकी आंखें आज भाग्यशाली हैं, इस समोचरण को देख रहे हैं आंखों से। आंखें अगर अंधे होते तो क्या देख सकते थे? कान अगर बहरे होते क्या उपदेश दे सकते थे और क्या जीवन बना सकते थे? ये आंखें भगवान को देखने के लिए मिली हैं, कान गुरु के उपदेश सुनने के लिए मिले हैं, और इन इंद्रियों का उपयोग यदि हम विषय कषायों में डाल देंगे तो पाप ही पाप होने वाला है, इनका दुरुपयोग हो जाएगा। दो कान, दो आंख, नासिका, जीव, ये धर्म करने के लिए मिले? पाप बांधने के लिए मिले हैं क्या? धर्म करने के लिए मिले हैं, इनसे धर्म करना चाहिए। आंखों का उपयोग भगवान को देखने के लिए और स्वाध्याय करने के लिए मिला है, उसमें उपयोग करो। तो आज तक जिंदगी में जो भी पिक्चर देखा है, गंदा देखा है, पाप बांधा है, वो सब धुल जाएगा पाप। कानों से अनेक गीत सुने हैं, पाप के गीत, उससे पाप बंधा है, उससे गुरु का उपदेश जिनवानी सुनकर उस पाप को धो। गुरु उपदेश सुनने के लिए कान मिले हैं, गीत सुनने के लिए नहीं। गीत जो अज्ञान अवस्था में सुना है उसको धोना पड़ेगा गुरु उपदेश सुन करके। जीव क्यों मिली है? जिलेबी खाने के लिए। एक साल पुराना अचार खाने के लिए। अपना आचार बिगड़कर अचार खाते हैं, इसके लिए मिली है क्या? ताजा ताजा अचार खाने के लिए मिली है क्या? पुराने आचार खाने के लिए मिली है? पुराना आचार अगर खाते हैं तो आप दुरुपयोग करते हैं इंद्रियों का, और ताजा बना करके खाते हैं तो सदुपयोग करते हैं। ताजा खाने वाले महावीर भगवान के शिष्य। हाँ, वो असली शांति सागर जी के शिष्य, ताजा खाने वाले। शांति सागर जी को क्या पुराना देते थे? सब चीजें ताजा चौके में। खुद को भी वही आचरण करना चाहिए, जैसे गुरु की चर्या निभाई है वैसे अपनी चर्या निभाओ। सब ताजा ताजा खाओ, घर में बनाओ, बिस्किट बाजार का नहीं घर में बनाना, चॉकलेट बाजार का नहीं घर में बनाना। बाजार की चॉकलेट में वही मांस, वही चर्बी, वही हड्डी, तेल के साथ चर्बी डालते हैं। व्यापार व्यवसाय उद्योग चल रहा है, सस्ते माल को महंगे वस्तु में मिलाना और बिस्किट बनाना, आपके बच्चे जाकर के बाजार में उसको खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, आपको पता नहीं, आप सोए हुए हैं। समोशरण सोने का है, यहाँ नहीं सोने का, सुनने का। सोने का है कि नहीं समोशरण? लेकिन यहाँ सोने का क्या, जागने का? यहाँ जागने का, जाग जाग करके गुरु के प्रवचन सुनना और अपने जीवन को जगाना, बच्चों के जीवन को भी जगा देना, उसको भी नरक जाने नहीं देना, दया करना बच्चों पर। बाजार की वस्तु खिलाते हो, पैसा देते हो, पैसा नहीं देना, उसी पैसे से अपने घर में सब शुद्ध वस्तु लाओ और बिस्किट बनाओ, चॉकलेट बनाओ, सीखो इन चीजों को कैसे बनाया जाता है, सीखना ही पड़ेगा, तो ही तो दुर्गति से बचेंगे। नहीं सीखोगे, प्रमाद करोगे, तो बच्चे भी नरक जा रहे हैं और आप भी पैसा देने वाले कृतकारी तन्मोदना से उनके साथ आप भी नरक गामी हो रहे हैं। जीवन की रक्षा कैसे करोगे? केवल पूजन से होगा क्या? आचरण तो हमारा हिंसात्मक ढंग से रहे और पूजन रहे ऊपर से, दस लक्षण में 10 दिन पूजन किया, पाप निर्जरा हो जाए, हो पाप की निर्जरा हो जाएगी पूजन करने मात्र से। एक व्यक्ति था, कुमार के घर के सामने पहुंच गया और उसने कहा, हमने गुरु का उपदेश सुना है कि कोई भी पाप होता है तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने जो किया है वो पाप का फल दूर हो, इतने कहने मात्र से दूर होता है, ऐसा सुन करके वो चले गए, चले देखते पाप करते और बोलते तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुमार के घर के सामने गया और वहां पर बाहर 20 घड़े रखे थे तैयार करके, नए नए घड़े, उसको उल्टा सीधा एक के ऊपर एक पर चढ़ करके रखा था उन्होंने, इधर 10 इधर 10, देखा उन्होंने, कुमार को घड़ा बनाने में 1 साल लगा है। कुंभारनिगे वंदु निमिष डोण्णेगे, कुंभारनिगे वंदु वर्ष डोण्णेगे वंदु निमिष, कन्नड़ में एक कहावत है, कुमार साल भर घड़ा बनाता है लेकिन कोई लाठी से फोड़ने वाला 1 सेकंड में फोड़ता है, 1 सेकंड में फूट जाता है, फोड़ देता है। उसने 8-10 कंकर लिए गिन करके और वह खेलने लगा, तमाशा करने लगा उन घड़ों के साथ, और जो भी गलती होगी, गुरु ने तो कहा ही है तस्मिच्छा में दुखड़म कहते ही पाप दूर होता है, तो एक एक कंकर लेकर के उसने जो लाइन से रखी थी, जैसे दशरथ वहां पर वो खेल रहा था, शिकार खेल रहा था, वैसे ही ये प्रैक्टिकल करने लगा, मेरी नजर कितनी तीक्ष्ण और मेरे हाथ कितने डायरेक्ट देखना है मुझे। एक कंकर लिया, फूट गया, ऊपर वाला घड़ा फूट गया, 10 थे वो, दूसरा फेंक दिया उसके नीचे का फूट गया, तीसरा फेंक दिया वो भी फूट गया, खट खट ढब खट खट आवाज आ रही थी। कुमार अंदर बैठा था, कुमार अंदर बैठ गया था, उसके लिए आवाज जा रही थी, घड़े को कोई कंकर मार रहा हो, तो उसने एक देखा, दो देखा, कुछ गिर गया होगा समझा, उसको पता नहीं चल रहा था, तो एक एक करके घड़ा फोड़ता जा रहा था, इतने में 8-10 घड़े उसने फोड़ दिया था। बाहर आया कुमार, देखता है व्यक्ति पत्थर मार रहा है, कंकर मार रहा है और फोड़ रहा है घड़े को, ये कौन है? पूछा उन्होंने, कौन हो? तो उन्होंने कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैं ही हूँ। तो क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घड़ा फूटता है क्या देख रहा हूँ। तो फूट तो रहा है ना? हाँ बिल्कुल फूट रहे हैं, तो ऐसे क्यों फोड़ रहे हो? नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है पाप तो करो लेकिन पाप के बाद प्रतिक्रमण कर लो तो दूर हो जाता है पाप का प्रायश्चित। तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहने से दूर होता है। ने कहा अच्छा, ऐसा पाप का फल दूर होता है? तो इधर आ जाओ, मैं भी वही सिखाना चाहता हूँ आपको। ला दिया वो घड़ा बनाने का जो एक मोटा लट था ना, लकड़ी लंबी, उसको लट ले लिया, बैठ जाओ, हाथ पकड़ा उसने और उनके सिर पर ठक, एक तस्मि छामि दुक्कड़म, ठक तस्मि छामि दुक्कड़म। कहने लगे मत मारो मत मारो मत मारो, उसका सिर फूट रहा है। उसने कहा तस्मि छामि, मैं भी बोल रहा हूँ ना, मुझे भी पाप नहीं लगना चाहिए, तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म समान है। उनने कहा बिल्कुल समझ में आ गया, तस्मि छामि दुक्कड़म कहते ही कोई भी पाप से बचना बच नहीं सकता। अब समझ में आ गया उनको, उन्होंने कहा पाप से बचने के लिए पाप के कार्य को भी छोड़ना पड़ता है। समझ में आ गया आप लोगों को भी समझ में आ गया क्या? नहीं क्या? ये दस लक्षण मनाने मात्र से पाप के निर्जरा होते ऐसे समझते हो? हाँ बोलो, दस लक्षण पर्व में बैठकर पूजा करने मात्र से जीवन के पाप धुल जाएंगे? पाप के कार्य भी छोड़ने पड़ेंगे। ये कौन से पाप? स्थूल पाप है। अपने जीवन में जो स्थूल पाप होते हैं उनको पहले रोकना पड़ेगा हमें, रोक करके फिर कदाचित हमारी गलती से कभी एक आध हिंसा हो जाती है, कुछ हो जाता है, उसके लिए प्रतिक्रमण करो, उसके लिए प्रायश्चित लो, उसके लिए पश्चाताप करो। ये कहा है आप निरंतर पाप कर रहे हैं, फिर प्रतिक्रमण और प्रायश्चित किस काम का? फिर ये पूजन किस काम का? ये भी एक प्रायश्चित का ही माध्यम है कि हे भगवान मेरे पाप के जीवन के पाप कर्मों को धोने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्रियाकांड। पाप निरंतर हो रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं तो किस काम का ये? 800 रुपया और बर्बाद हो गए दस लक्षण में, उसमें एक और साड़ी आती, पूजन क्यों करते? और एक आती, टाइम हो गया, साढ़े दस, बस साढ़ी बस साढ़े दस यहीं पर बस, अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जिनवानी
मुखसेनी श्रित जो शीतल वाणी।